नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अल्पा लांगवा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले तीन दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावाधिनी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाई स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता अलका लांबा को वर्ष 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा डालने और एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने आज केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जिसमें क्लब को अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सरकार को सौंप देने को कहा गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल का दिन तय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक अपना परिसर वापस सरकार को सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
की रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार की मेट्रो मंडे पहल के तहत अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस से यात्रा की। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से साझा और टिकाऊ परिवहन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम हो जाएगा। मेट्रो मंडे अभियान के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान से प्रेरित ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की आम सभा की बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल के माध्यम से कार पूलिंग करते हुए दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पहुंची। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज बताया कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की विकास निधि जारी की गई है। इससे विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये निर्णय दिल्ली सरकार निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान लिया गया। श्री वाही ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 14 नए यांत्रिक सड़क स्वीपर खरीदे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि यह दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। एक रिपोर्ट।
न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है। राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने को लेकर पिछली सरकारों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया।
दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा है। पिछले 25 सालों से लगातार सरकारें इंश्योरेंस देती रही, लेकिन किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि हमने हर सूरत में अपने 5 साल के टेन्योर में यमुना जी की सफाई करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके अंदर पानी आता है, जो अलग अलग जगह से एसटीपी के माध्यम से सीईटीपी के माध्यम से आता है, वो साफ जाए। हम सारे एसटीपी को सीईटीपी को जहां जहां डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं।
मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगभग 1,13,900 लीटर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। एक रिपोर्ट।
श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन यूनिट्स के माध्यम से 1,00,000 से अधिक ORS पैकेट बांटे गए, जिससे लोगों को लू और पानी की कमी से बचाया जा सके। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए 40,000 से अधिक गमछे और 30,000 से अधिक कैप भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न जिलों में विशेष कूलिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को आराम करने और गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियां की बैठने की व्यवस्था, ठंडा पेयजल, 5 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए प्रत्येक स्थान पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की जगह प्रतिदिन बदली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंच सके। ये अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।